तभी उसकी नज़र आस्तिक पर गई, जो मिस्टर गोयनका के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसे देखकर अरुणिमा ने अपने मन में कहा, इस राक्षस ने कहा है कि मेरी रजत की बात करने की वजह से ये मुझे सज़ा देगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये मुझे एक गलती की सज़ा दे या दो गलतियों की। अगर मुझे सज़ा मिलनी ही है तो थोड़ी और सही, पर कम से कम इस वक्त अपने परिवार के साथ तो समय बिता पाऊंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अरुणिमा अपनी जगह से खड़ी हुई। उसे ऐसा खड़ा होता देख सब चौंक गए और आस्तिक की नज़रें छोटी हो गईं। अरुणिमा ने राधा जी से कहा, माफ़ कीजिए, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। राधा जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाइए आप अपना काम कर लीजिए, हम लोग तो घर के ही हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। अरुणिमा उसके बाद आस्तिक को देखे बिना वहां से सीधे बाहर की तरफ चली गई, लेकिन आस्तिक की कठोर निगाहें अरुणिमा का पीछा कर रही थीं, जब तक कि वो दरवाजे से बाहर नहीं चली गई। वहां से निकलकर अरुणिमा सीधे गार्डन की तरफ भागी, पर इससे पहले कि वो उस तरफ जा पाती, वो दरवाजे के पास ही किसी से टकरा गई। अरुणिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं और गिरने ही वाली थी, पर तभी एक मजबूत हाथ ने अरुणिमा को थाम लिया। अरुणिमा को जब यह एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े एक शख्स को देखकर चौंक गई। उसके सामने एक अच्छी खासी कदकाठी का इंसान खड़ा था। उसकी हाइट करीब करीब आस्टिक के बराबर की ही थी। उसके बाल थोड़े लंबे थे, जिसे उसने इकट्ठा करके एक छोटी चोटी बनाई हुई थी और उस पर रबर बैंड लगाया हुआ था। चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी। उसकी घूरती हुई निगाहें अरुणिमा को देख रही थीं। अरुणिमा ने अपना सिर उठाया और सबसे पहले इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए आस्तिक को देखा कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया। रजत से बात करने पर तो वो उसे सज़ा देने की बात कर रहा था, इस इंसान ने तो उसे हाथ लगाया था, अगर आस्तिक ने ये देख लिया तो उसे जिंदा जला देगा। जब अरुणिमा को यह एहसास हुआ कि आस्तिक ने उसे नहीं देखा, तो उसने सुकून की सांस ली। उस आदमी ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? अरुणिमा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरुणिमा वहां से एक कदम आगे बढ़ी हुई थी कि उस आदमी ने उसे रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको यहां पर पहले कभी नहीं देखा है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? अरुणिमा को इस आदमी से पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी। उसने हैरानी से उसे देखा और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैं अरुणिमा हूँ। और इसके बाद अरुणिमा सीधे गार्डन एरिया की तरफ चली गई, लेकिन वहां पर खड़ा वो शख्स उसे देखकर एक तिरछी मुस्कान देता है और उसे अपनी निगाहों से घूरते हुए कहता है, अरुणिमा अच्छा नाम है। वो शख्स जैसे ही अंदर आया, वैसे ही आस्तिक की नज़र उस पर गई और वो मुस्कुराते हुए कहा, गोयनका साहब, जीवन भी आ गया। जीवन वहां आया और सबसे पहले आस्तिक को देखकर नमस्ते कहा। प्रणाली इस वक्त वहां नहीं थी, शाम की पार्टी की तैयारी के लिए वो अपने कमरे में तैयार होने गई थी, क्योंकि आज सिर्फ आस्तिक और अरुणिमा की रिसेप्शन पार्टी ही नहीं थी, बल्कि यहां पर प्रणाली और जीवन की शादी की भी अनाउंसमेंट होने वाला था। आस्तिक और जीवन स्टडी रूम में बैठकर बिजनेस की बात कर रहे थे। वैसे तो जीवन के पास उसके पिता का भी इतना सारा बिजनेस था, लेकिन राज परिवार से जुड़ने का एक अच्छा मौका उसके लिए प्रणाली के रूप में आया था, जब उसे सामने से प्रणाली से शादी करने का ऑफर मिला था। पिछले एक साल में जब से जीवन और प्रणाली की सगाई हुई थी, तब से जीवन ने प्रणाली को अपनी बातों में कुछ इस तरीके से बहका लिया था कि अब उसे यही लगता था कि जीवन से अच्छा जीवन साथी उसके लिए पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता था। दरअसल लड़कियों को कैसे इंप्रेस करना है और कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, ये बात जीवन अच्छी तरह से जानता था। हर रोज प्रणाली के लिए फूल भेजना, किसी भी ओकेजन पर उसके लिए गिफ्ट लेकर आना, उसके साथ रोमांटिक डेट प्लान करना और सबसे ज्यादा शादी से पहले कुछ न करने की बात नहीं, प्रणाली को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया था। जीवन और प्रणाली ने सगाई होने के बाद भी आज तक एक दूसरे को किस नहीं किया था और यही बात प्रणाली को जीवन की पसंद आई थी। जीवन भी अच्छी तरह से जानता था कि उसने खुद को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, वरना किस छोड़ो अब तक तो शायद उन दोनों के बच्चे भी हो जाते। पर उसे सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए थी वो प्रणाली नहीं थी, बल्कि रियासत में अपना हिस्सा चाहिए था और इसके लिए उसे प्रणाली को सहारा बनाना था। वो जानता था कि आस्तिक के लिए उसकी बहनें उसकी जान है और अपनी बहन की खुशी के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, तो रियासत कौन सी बड़ी चीज है। बाहर पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी और मेहमान भी आने लग गए थे। पृथ्वी शाम को जल्दी आ गया था और सब मेहमानों का स्वागत कर रहा था। प्रणाली और जीवन एक दूसरे से मिल चुके थे और एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। वैसे तो पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी, लेकिन जीवन की नजरें अरुणिमा को ढूंढ रही थी। अरुणिमा अपने कमरे में थी और मिश्री अरुणिमा की साड़ी सही कर रही थी। अरुणिमा ने अपने गहने देखते हुए कहा, मिश्री इतना सा पहनकर मैं नीचे पार्टी में कैसे जाऊंगी, मैं इनमें से कुछ उतार दूं क्या? पर मिश्री अपना सिर पीटते हुए कहती है, क्या दीदी, आप यहाँ की रानी हैं और रानी होने के नाते तो आपने बहुत कम गहने पहने हुए हैं। मैं तो कहती हूँ दो चार रानी हार और डाल दो और अपने सिर पर ना बड़ा वाला ताज रख लो, ताकि सबको ये पता चल जाए कि आप यहाँ की रानी हो। ये बात मिश्री ने मजाक में कही थी, लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मिश्री को देखते हुए मन में कहा, कितनी खुश है मेरी बहन ये जानकर कि उसकी बड़ी बहन एक रियासत की रानी है। पर उसे कैसे बताऊं कि ये सिर्फ एक दिखावा है, एक झूठ। असलियत क्या है वो सिर्फ इस बंद कमरे के अंदर मैं ही जानती हूँ। घर में मेरी हैसियत एक रानी की नहीं है, बल्कि एक नौकरानी की है, शायद नौकरानी से भी गई गुजरी।